कुछ बातें इसमें हैं जो पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं और शोर वो मचाते हैं जिनको कुछ पता नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में नहीं आया तो ये मत समझिएगा क्या पता नहीं बेच के आ गए कौम को। कानूनी टेक्निकली चीजें हैं कुछ, इसलिए वकील साहब भी मौजूद थे और अदालत भी मौजूद थे। कुछ कलमें लगती हैं आपकी FIR में, कुछ मसाइल होते हैं आपके FIR में जिसका आपको इल्म नहीं है, वो टेक्निकली चीजें वो भी आज हल करके आए। लिहाजा ये मत समझिएगा कि पता नहीं कोई कारनामा करके नहीं आए, ये बहुत बड़ा कारनामा है। ठीक है ना, मिर्जा साहब अगर यहाँ मौजूद हैं तो ऊपर तशरीफ ले आए। सगीर आबिद साहब अगर यहाँ मौजूद हैं तो वो तशरीफ ले आए। समर साहब यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद अली शाह साहब यहाँ मौजूद हैं, ISO के बिरादरान, पयाम विलायत के बिरादरान, JSO के बिरादरान, जाफरी यूथ के बिरादरान, सब आ जाए क्योंकि सबकी मुत्तफिका है, किसी एक की गर्दन नहीं पकड़िएगा। अगर खाइन है तो खाइन है और मोमिन है तो सब मोमिन है। ठीक है ना, किसी ने भी खयानत नहीं की है। कुछ आवाजें आ रही थी। देखिए एक मसला बहुत अरसे से हर आदमी परेशान था, दहशत गर्दी में कौन कौन सी ताकतें इन्वॉल्व हैं। अब यहां नाम नहीं ले सकते, हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह बार ही मुतालबा कर रहे थे, हमें बताओ कौन है ये जो दहशत गर्दी का चश्मा बह रहा है, हमें नाम मालूम हो। क्योंकि नाम मालूम नहीं होते तो हम भी मजबूर होते थे, अब नाम मालूम हो गए, अब इसके समरात भी नजर आएंगे आपको, सरकारी लोगों की समरात दिखाएंगे आपको। ठीक है ना, ये काफी है पैगाम, समझ लीजिए बस, अकलमंद के लिए इशारे काफी होते हैं। बहुत तुलानी ब्रीफिंग हुई, एक एक पहलू पर, कौन कहाँ है, किसके अड्डे कहाँ हैं, फैक्ट्रियां कहाँ हैं, कौन पाल रहा है, कौन सरपरस्ती कर रहा है, किस अंदाज में चलाया जा रहा है और कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ शामिल है, इस पर सहरा से गुफ्तगु हो चुकी है। और ये बातें वो हैं कि जो आपसे नहीं कर सकते और ये आपकी है भी नहीं। ठीक है ना, इस पर हम पे एतमाद करें। एक बार सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। देख आपने देखा होगा एक साजिश बड़ी शुरू हुई है इस शहर के अंदर। ठीक है ना, जिसकी वजह से आपने लिखना शुरू कर दिया अलम के ऊपर कि अल्लाह लिखो, मोहम्मद लिखो, रसूल लिखो, ताकि तौहीन का मुकदमा कायम किया जाए। तो दुश्मन जिस तरह वार करता है उस तरह दिफा भी करना है, तशय्यों का हिकमत यही होती है। इसीलिए लोगों ने अलम अब्बास पे अल्लाह मोहम्मद अली लिखना शुरू कर दिया, जैसे कोई गिराएगा तौहीन का मुकदमा कायम हो जाएगा। तो दुश्मन जैसी चाल चलता है, मकर वो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकरीन, दुश्मन अपनी चाल चलता है, हम अपनी तदबीर करते हैं। उलामा को और कुछ जो दीनी खिदमात अंजाम दे रहे, गुज़िश्ता एक साल से कराची में सिंध के अंदर लोगों पर तौहीन रिसालत के मुकदमे कायम हो रहे थे। वकील साहब उससे बेहतर जानते हैं, ये तौहीन रिसालत के ऊपर जमानत नहीं है। ठीक है ना, बड़ा मुसीबत होती थी, बड़ी मुश्किलात होती थी, इसके पैर पड़ो, उसके पैर पड़ो, सियासी अप्रोच लगाओ, ये लगाओ। हालांकि कानून के अंदर इसकी एक शिक मौजूद है जिसके तहत FIR कटती है। होना ये लग गया था कि कुछ लोग फायदा उठाने लग गए थे कि एक मोची भी है, मोची है ना, जिसकी कोई औकात नहीं है, शिया दुश्मनी में नाम लगा दिया, ये इसने रसूल की तौहीन की है, ये इसने फला की तौहीन की, मुकदमा कायम कर दो। ठीक है ना, दो आदमी जमा होगा, शोर मचाया, सचों ने काट दिया, जबकि इसमें एक कानूनी शिक मौजूद है। जब तक उन तकाजों को पूरा नहीं करता, कैद किया जाएगा, FIR नहीं कट सकती, और उससे सर पर नजर किया जा रहा था। आज उस पर हमने गुफ्तगू की है, क्योंकि ये लीगली मसला है, ये ताजीर कहलाती है, सुनिए। ये इस्तलाह है 295 सी ताजीरात पाकिस्तान में आती है। ठीक है ना, इसका सजाए मौत है, इसके ऊपर याद रखिएगा, बहुत हसास मसला है। गिलगित के अंदर एक आलिम दीन ने काम करना शुरू किया, उलमा जानते हैं, मौलाना सिकंदर, उसने तशय्यों के लिए इतना काम किया, इतना काम किया कि हजारों आदमी उसने शिया किए, चल जाहिल पहुंचे, उन्होंने देख लिया कि तशय्यो फैल रही है, इसे रोक नहीं सकते। उस पर रहता बेचारा गिलगित में सांगड़ के अंदर तौहीन रिसालत का मुकदमा कायम किया, और वो यहां भी कितने मसाइल भुगते हम जानते, लोगों को मालूम नहीं है। वो आपने देखा भी कुछ अरसे पहले कराची के अंदर प्रेस में कोई साहब हमारे बिजने मोमिन थे, छपवाने गए, वो एक चावल वाला खड़ा ठेले पे खड़ा था, किसी ने उसको पैसे दिए, उसने जाके कहा किसने रसूल की तोहिन कर दी, उस पर मुकदमा कायम हो गया, वो कई दिन के लिए रुल गया जेल के अंदर। डेढ़ महीने बाद आया, वो भी कौन सी सियासी जमात और मजहबी जमात है जिससे हमने राब्ता नहीं किया। अभी परसों की बता रहा हूं, बहुत सारी मिसाल। परसों कोठरी के अंदर ये वाक्य, वो मौलाना मजलिस पढ़ने आए, तारीख है, तारीख में बहुत सारे हकायक बयान किए जाते हैं। उन्होंने क्या, वो जाके थाने पहुंच गया, इसके खिलाफ एफ आई आर काटो मौलवी के खिलाफ। तो अब हम तय करके आए हैं, ये कानून मौजूद है लेकिन इंप्लीमेंट गलत होता है इसके ऊपर, लिहाजा हम उस शिक को लेके गए थे, उन्होंने यकीन दहानी कराई है, दहानी कराई है हमको, कल हम जाएंगे, क्योंकि इसमें टेक्निकली मसले ना, लीगली मसला ये, और तीन कमेटी का ऐलान, कमेटी का ऐलान कर देंगे, तीन रुकनी हमारी सरपरस्ती में जाएगी, सब हजरात होंगे, हम तीन करेंगे, हम तो सबको एतमाद में लेके जाएंगे जब एतमाद कायम हो गया। तो कुछ टेक्निकली चीजें, इंशाल्लाह ताला वादा हो गया है, रिटर्न में आ गया है हमारे पास कुछ चीजें, एक टेक्निकली मसला आ गया था जिसकी वजह से वो थोड़ा सा रुक गया, इंशाल्लाह कल उसके बाद कोई भी आप पर तौहीन रिसालत का मुकदमा कायम नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। एक कामयाबी आपको ये हुई है, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले में। अच्छा एक मसला, क्योंकि अभी कायम हुआ था योम हुसैन करने पे, वो इस सिंध का मसला नहीं था, वो वफाक का मसला था, गवर्नर साहब वफाक के आदमी थे, ये वहां से उधर भी गिलगित और बल्तिस्तान में कराकरम में पहुंचा दी गई है बातें, यूनिवर्सिटी के हवाले से जो योम हुसैन किया गया था और उसके बाद जो उन्होंने उस पर कार्रवाई की, लोगों को अरेस्ट किया यूनिवर्सिटी के अंदर, कुछ लोगों को कलदम करार दे दिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। कल परसों गवर्नर साहब जा रहे हैं सदर के पास, उसने कहा क्योंकि ये मरबूत नहीं है उससे इसलिए वो माजूर है, उसने कहा मैं इस बात पर सदर मुमलिकत से बात करूंगा और वहीं से बैठ के आपके किसी फर्ज से बात कराऊंगा। और उसने देखिए बहुत सारी चीजें उसके हाथ में भी नहीं, मजबूर है ना ये भी, उसने कहा कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको खत्म करा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके हाथ में नहीं। एक बार सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्योंकि ये हमारी करारदाद में शामिल था, ये हमारे मुतालबात में नहीं था, ये करारदाद में था, लेकिन हमने उसको इस तरह से घेरा बीच में, उसने कहा ठीक है। सरसर दहशतगर्द जो आप मुसलसल सुन रहे होंगे मीडिया के ऊपर, हम सब बार बार ये कह रहे थे सरसर दहशतगर्दों को फांसी लटकाओ, जिसमें एक एक दहशतगर्द कई कई सौ लोगों के कत्ल में शामिल है। और एक मुतालबा हम ये कर रहे थे कि कौन सी कुवतें हैं, कौन सी एनजीओज हैं कि जो इस मुल्क में सजाए मौत का कानून खत्म करना चाहती है बड़े प्यार से, और वो मुश्तरका दुश्मन हम सबका है, चाहे वो शिया सुन्नी हो, वो ये खबीस अमेरिका है, उसने ये टोले पाले थे ना। देखिए असल दुश्मन को ना भूला करें, ये जितने भी कोई सा भी नाम दे लें दहशतगर्दों का, ये हैं सब उनकी नाजायज औलादे, इनका बाप, इनकी जड़ें, ऐसे लगाओगे अमेरिका के खिलाफ पूरी कुवत है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, समझे ना। और ये मैं आपको समझा दूं, एक मिनट अभी लगाता हूं नारा, ये अमेरिका है सारा इसके पीछे, और ये यहां नहीं है, ये खबीस बहरीन में भी शियों को मरवा रहा है, ये खबीस शाम के अंदर हिजबुल्ला की कमर तोड़ने के लिए शाम में भी कत्लो गारत करी। आपने पूरे पाकिस्तान में 15 साल के अंदर 40,000 लाश उठाए, पिछले मार्च से लेकर अब तक शाम के अंदर 55,000 आदमी मार दिए हैं इस अमेरिका ने। इराक के अंदर आपकी क्या आजमाइश हुई है देखिए, ये होती है इराक के अंदर, आपने 6,000-7,000 5,000 शहीद दिए इराक के अंदर, जब से जंग छिड़ी है इस दौर से लेकर अब तक तकरीबन 12 से 15 लाख शहीद दे चुके हो। इस्तकामत देखो उनकी, कौन है ये सब अमेरिका कर रहा है इस मुल्क के अंदर, क्यों? सब बिकावा माल है, 57 ममालिक में तकरीबन अक्सर बिके हुए, जो डॉलर देता है मुंह भरता है खामोश हो जाता है, वो जो बैठा हुआ है किबला अव्वल लेकर और अपने आप को मुसलमानों का चैंपियन समझता है वो इसका आलाकार है ना। एक ही मुमलिकत है और वो है आपकी तशय्यो की हुकूमत जो खटक रही है, जिसने आंख में आंख डालकर बात की है। उस हुकूमत को गिराने के लिए इस मुल्क में तशय्यो को मारा जा रहा है, तशय्यो को कत्ल किया जा रहा है। लिहाजा सुने सुने सुने, उस हुकूमत को गिराने की बलोचिस्तान क्यों बर्बाद किया गया। अब सोचें, ये थोड़ी सियासी बातें होती हैं, जज्बाती बातें नहीं, कुछ जरा अखबार पढ़ा करें मालूमात। बलोचिस्तान इसलिए उजाड़ा गया, हजारा क्यों मर रहे हैं, इसलिए कि बहुत बड़ी कुव्वत है, अगर हमला किया तो यहां से शिया खड़े हो जाएंगे। पारा चुनार और बल्तिस्तान ऐसी जगह जहां अक्सर ये शियों की, उसको क्यों उजाड़ा गया, इसलिए कि हमें डर है कि अगर कुछ किया तो यहां से मुजाहिमत खड़ी हो जाएगी, यहां से मुजाहिमत खड़ी हो जाएगी। इस शहर में क्यों शुरू किया, कि ऐसा ना हो कि इनकी ताकत को बांट दो, इनको गिरोह में तकसीम कर दो, नामों में तकसीम कर दो। क्यों इनको तकसीम कर दो, ताकि ये किसी पोजीशन में रहे ना रहे कि जब वो इस्लामी हुकूमत जो इमाम जमाना की हुकूमत है, जो मराजों और रहबरियत के सरपरस्ती में चल रही है, जब उस पर हाथ डाले तो शिया इस काबिल ना हो कि आवाज उठा सके अपने हक के लिए। लेकिन तुम अहमदों की दुनिया में रहते हो, हम तुम्हारे इन नाजायज बच्चों को नहीं जानते, हम उनको जानते जो दूध पिला रहे हैं सांपों को। उससे बरात के लिए ऐलान करो, दोनों हाथों को बुलंद कर, तुम्हारा सबका दुश्मन है अमेरिका। गवर्नर साहब ने भी बता दिया कि पूरा जोर लगा पड़ा इन दहशतगर्दों को फांसी ना देना। आप क्या समझ रहे हो, ये यहां का खेल नहीं है, ये किराए के कातिल हैं, किराए के कातिल हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। आज खुल के बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क का बड़ा सबसे ताकतवर सदर गुजर चुका, वो भी बेबस था। अमरीका ने कहा खबरदार, हमने इनको किराया दिया था, ये किराए के कातिल हैं, इनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं होना चाहिए। ये सारी समझ में आ गई आपको, आपका असल दुश्मन है अमरीका। लिहाजा दोनों हाथों को बुलंद कर अमरीका को पैगाम दे दो, हम बेदार हैं, हमें पता है कौन कर रहा है। लेकिन याद रखो, आज तुमसे बरात का ऐलान कर रहे हैं, हर साथ से आहिस्ता आहिस्ता नकाब उठाएंगे। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो लिहाजा अमरीका अटकावा इसमें कि इनको फांसी मत देना, हमने किराया दिया था इनको, ये किराए के कातिल है। एक मसला आज कंफ्यूजन दूर हो गई, हम भी कह रहे थे भाई क्या हो गया, एक तरफ तुमने अलम उठाया हुआ दहशतगर्दों को खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ पता पड़ा कि ये है और वो माई बाप है, डॉलर खाने उनसे इसी नाम पर, लिहाजा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बात हो गई उनसे कि आप इस मसले को जारी रखिए, उठाइए मरकज में भी उठाइए, यहां भी उठाइए, ताकि प्रेशर बिल्डअप। जिम्मेदारी है हमारी, वजीफा अदा करना, नतीजा खुदा के हाथ में। सैयद शहदा ने करबला में अपना वजीफा अदा किया था कि बस मेरा फरीजा है नाना का दिन मुसीबत में, मैं अपना हक अदा कर दूं। और फिर आपने देख लिया नतीजा निकला, आज पूरे आलम इस्लाम में जो इस्लाम फैलाई सैयद शहदा की कुर्बानी का नतीजा है। हमने अपना वजीफा अदा करना है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, नतीजा जब भी निकले हम कामयाब है। लिहाजा ये बात भी वहां पहुंच गई है। अच्छा एक और अभी जो वाकया हुआ था, जो कमिश्नर साहब के साथ बदसलूकी की थी हमारे कुछ लोगों ने, उसकी एफआईआर लॉन्च हो रही थी, उसकी एमएलओ रिपोर्ट तैयार हो गई थी, हमने दो टोक बात की। जब बात खत्म हो गई है तो अब एफआईआर लॉन्च नहीं होनी चाहिए। ये लगे हुए थे, आप तो काम कर रहे थे, आपको नहीं पता यहां कैमरे लगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, ये जो कैमरे लगे थे ना, उनकी बेचारों की फोटो बन गई, उनको पता ही नहीं हम कर क्या रहे, लेकिन वह तय करके आए हैं एफआईआर लॉन्च नहीं होगी। गवर्नर ने भी, कमिश्नर साहब यहां आए थे, फिर आप शोर शुरू हो गए थे कि यहां क्यों आ गया, वो इसलिए आया था भाई समझा करो, हर दफा जज्बात नहीं चलते, हिकमत से चलती है, लेकर आए थे कि तुम आए क्यों थे, अगर तुम्हें गुस्सा था तो ठीक है ना, वो FIR अब नहीं कटेगी। ठीक है, एक ये बात उमर वाली आ गई थी क्योंकि अच्छा एक मसला जो हमारे साथ चल रहा था साना आशूर साना अरबईन और ये टारगेट किलिंग के अंदर, इस पे बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी, बड़ा अहम मसला था ये। हाँ उसका ड्राइवर भी जख्मी है, उसकी सूरत हाल गोली लगी है, क्रिटिकल सूरत हाल है। ये FIR उसके मुंह से निकाल के लेकर आए और ये आपकी ताकत की वजह से, ये खेल नहीं है, कमिश्नर पे गोली चलाई है। हाँ भाई देख के आए और अभी मैं एड्रेस भी बता दूं तो देखे आना फिर आप। ठीक है, ये खेल नहीं है। और अगर नहीं भी लगी ना कमिश्नर पे गोली करना, ये कभी तजर्बा कर लिया, जब लोग नहीं हो ना फिर मारना, फिर पता पड़ेगा क्या होता है। ठीक है ना, सुनिए जी, तो मोमिन बन के आए थे तो वेलकम करते ना, तो गोली मारो ना। ठीक है, अब सुनिए, एक मिनट रुके रुके, नहीं खत्म हो गई बात, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, एक मिनट तक बैठ, आप बैठ जाइए उधर। उसने सही बात की, उसने सही बात की है, वो मोमिन बन के आए थे। इधर भाईजान आप इधर बैठ जाइए, आप इधर बैठ, वो मोमिन बनकर आए थे। मैं जवाब, मोमिन बनकर आए थे। बहरहाल सुनिए, ठीक है ठीक है, सही, वो उसके जज्बात सही है, वो मोमिन बनकर आए थे, हमें फूल डालने चाहिए था, हमने उसको गोली मारी, ये हमारा मोमिन होने का सलूक है, बस खत्म हो गई बात। ये जवाब, एक मसला बड़ा चल रहा है, कुछ खानदान ऐसे कि जिनके इसकी काफी अरसे से इसके चक्कर में लगे थे, ये हाथ नहीं चढ़ रहे थे, कब हमें मौका मिलेगा इनकी गर्दन पर पैर रखे, आज मिल गया मौका। सुने, आज मौका मिला, आज हमने गर्दन पर मौका पाकर तय कर दिया मसला। आपके कुछ खान वादे ऐसे, आप तो जज्बात में आते, पलट कर कौम नहीं देखती हमारी कि उसके घर में क्या हो रहा है। बास शहदा के घर ऐसे हैं कि जिनके घर उजड़ गए उसमें मर्द बाकी नहीं बचा, एहसास नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज थी जिसकी वजह से परेशान थे कि क्या करें। उन शहदा के घरों को हाथ फैलाने पर मजबूर करते कि भीख मांगे। जो आज सबसे बुनियादी हमने कामयाबी हासिल की वो ये है, सुन लीजिए, जिन शहीदों के वर्सा थे, घर का जो कफील था वो शहीद हो गया, उसका बेटा या उसकी बेटी, हमने रिटर्न में वादा ले लिया, इंशाल्लाह इंप्लीमेंट होगा, उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। बता रहा हूं, अभी सुनिए, अभी आपको मैं बताऊं मसला क्या हुआ था। अभी एक जनाजा बड़ी खुफिया अंदाज में दफना दिया गया था, ऐसी यतीमी की हालत में दफना दिया गया कि पता भी नहीं पड़ा आपको। उनको जाकर यह कहा गया कि अगर आपने लोगों को बुलाया तो इसकी नौकरी के जो पैसे ग्रेजुएटी वो गई, बच्चे को नौकरी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये कई जनाजों में हम देख चुके थे, हमें मौका नहीं मिल रहा था, हम ताकत का इंतजार कर रहे थे, और आज मैं शहीदों का खून रंग ले आया। आज के बाद वो खानदान जो शहीद होता है, जिसका एक कफील था चला गया, उसका बच्चा अगर है, बालिग है, वो नहीं छोटे से बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। ये याद रखिएगा कि मौलाना साहब आपने कह दिया था बच्चे को नौकरी मिलेगी, अब गोद का इसको दिलवाओ। उसके लिए भी हमने तय कर लिया है कि उसकी एक उम्र हमने मुअय्यन की है, काम चल रहा है, ये तो हम ले आए मुतालबात मनवा कर, उसकी एक उम्र का तयन किया गया, जब इस काबिल होगा कि नौकरी दी जाएगी तो उसको हुकूमत नौकरी देगी। अभी मैं बता रहा हूं, पूरी बात कर रहा हूं, हुकूमत पैसे देगी, ओ नौकरी देगी। ये वो है कि जिसका वारिस चला गया। बास हजरात होते हैं कि धमाके के अंदर या फायरिंग के अंदर, जैसे आपकी ये बच्ची है मेजर फातिमा जो पैरालाइज हो गई, बास घराने ऐसे कि जिनके जो जख्मी होते हैं उनका हाथ चला गया, बाजू चला गया, उनको नौकरी नहीं देता, वो क्या करे सारी जिंदगी, उसकी शादी भी है, बच्चे भी है, हाथ फैलाए भीख मांगे। हमने कहा कि तुम्हारे बंदे मरते हैं, कारकुन मरते हैं, प्लाट भी देते हो, नौकरियां भी देते हो, ये हमारे जो मजलूम शहीद, और ये हमारा मसला नहीं है। हमने कहा शिया के साथ हो तो यही करना, सुन्नी के साथ हो तो यही करना। हमने कहा तुम हमारी कौम पे जुल्म भी कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारी कौम को भिखारी बना रहे हो। हमने कहा अगर किसी का उस जाया हो जाता है हाथ पांव या कोई ऐसी चीज कि जिसकी वजह से उसे रोजगार नहीं मिलेगा, हुकूमत की जिम्मेदारी उसको रोजगार देगी। उसने वादा किया कि हमारी जिम्मेदारी हम उसको भी रोजगार देंगे। ये भी आपकी एक कामयाबी है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ठीक है, अब सुन लिया क्योंकि वक्त बहुत हो गया। खुलासा कर रहा हूं क्योंकि बातें बहुत सारी है, बहुत सी टेक्निकली वो समझ में नहीं आएंगे, समझा भी नहीं सकते आपको। दूसरा, वो फकीर बना रहे थे कौम को, अपने आप को बहुत सही समझते थे, 2 लाख दे दिए, 1 लाख दे दिया, वो भी रुला रुला के दिया। हमने उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। हमने मुतालबा किया था, अच्छा इस पर हमने जोर नहीं दिया कि हम कमजोरी जाहिर करें कि हम कोई भीख मांगने आए अपने शहीद के लिए, वकार के साथ जाएं। पहले हमने उससे बात की है कि हमारे पास ऐसे इदारे हैं जो इस मुल्क में 9-9 हजार 10-10 हजार खानदानों की किफालत कर रहे हैं, और वो जो तुम बात करते हो ना कि हम जख्मियों को पैसे दे देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे आगा खान के अंदर जो जख्मी होता सुहेल नजर लड़का, गवर्नर साहब से कहा आपने 1 रुपया नहीं दिया था, हमारी कौम इतनी मजबूत है कि एक आदमी के 24 लाख रुपए भरे थे, वह हजरत यहीं मौजूद है स्टेज के ऊपर, एक आदमी के। और जितने टारगेट किलिंग में जख्मी होते हैं, फायरिंग होती है, आगा खान चले जाइए, हमारी कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत और कुव्वत रखती है, करोड़ों रुपए महाना खर्च करती है इस मद के अंदर, ठीक है ना। एक माह में 2.5 करोड़ रुपए का बिल आया है। हम भीख मांगने नहीं गए तुमसे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है ना जान माल का तहफ्फुज़ करना, नहीं कर सकते। तो हमने कहा है कि वो फैमिली, ये हमने क्योंकि इसमें भी एक पेचीदा मसला है, लिहाजा वो खानदान उसमें तकसीम किया है कि जिसकी 6 बेटियां मर गया, शहीद हो गया, मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया बिला तफरीक, शिया या सुन्नी, तो उसके लिए एक उसूल बना रहे हैं, 2 लाख नहीं चाहिए, 3 लाख नहीं चाहिए। हमने तय किया या तो कम से कम 20 लाख रुपए दो या 10 लाख रुपए उसे दिए जाए। उसमें एक कानूनी पेचीदगी आ गई थी जिसकी वजह से वो रुक गया। रुका से मुराद ये नहीं है, वो किसी और इदारे से मरबूत था, क्योंकि टाइम 5 बज गए थे, वो आ नहीं सका। उसके लिए 3 रुकनी कमेटी बन गई है, हम फॉलो करेंगे उसको और ये मसला भी आपका हल हो जाएगा, क्योंकि ठप्पे लगवा के आए कुछ चीजों के ऊपर हम, एक ये मसला भी हो गया। इंशाल्लाह नहीं होगा, हम मुजरिम नहीं है, ठीक है ना, जो फेयर बातें बता रहे हैं। नहीं होगा तो क्या होगा, दोबारा बुला लेंगे, दोबारा आ जाना, आओगे नहीं आओगे। ठीक है ना, तो ये मत समझिएगा कि सुबह मेरे घर पे लाइन लगा देगा, भाई आपने कहा था गरीबान पकड़ लो, जहां मोहल्ले में मिलने, जनाजों में मिलने, मिजाज जानता हूं अपने जवानों को, जवानों का, ठीक है ना। ये बात हुई है और इसमें इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा मसला। और उनको बोलिया है कि हमारा ये भी बोल के आए गवर्नर साहब ने, क्योंकि आप तो आजाद बैठे थे, उन्होंने कंटेनर लगाया हुआ था अपने, तो मैंने कहा तुमने मेन गेट बंद कर लिया, दूसरे गेट से लेके गए थे, मैंने कहा आपने अच्छा अच्छा किया कि हमें दूसरे गेट का भी रास्ता दिखा दिया, अब यहां से आ जाएंगे हम, ठीक है ना। उनको उन्होंने बेचारे हमसे ज्यादा, हम तो आजादी के माहौल में तरसे हुए थे ना, आजादारी नहीं करने देते, कंटेनर लगा दिया, ये लगा दिया। सबसे बड़ी चीज जो मैंने पाई है ना, रूहानियत पाई है, रूहानियत, खुदा की कसम ये बेबस लोग हैं, बेबस लोग हैं, नहीं मालूम कितने बेबस हैं। जिस आजादी के माहौल में आजादारी की है ना, कुछ नहीं मिले। जो रूहानियत इस इज्तिमा में मिली है, इसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती है। इस इत्तेहाद ने जो आज काम किया है, तो खैर उनसे हमने कहा कि पिछले गेट से अब आ जाएंगे। अब आ जाइए लीगल, तो हम फिर अभी हम एक किताब जब भी निकाल देंगे इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर। जख्मियों के हवाले से होता यह था कि बेचारा, आपको भी बता रहे हैं, अब सुन लीजिए आप हजरात यहां बैठे ना, कोई हादसा होता है, कोई जख्मी होता है, अगर छोटा मोटा वाकया है, छोटा मोटा मसला है, छोटा मोटा मसला है, तो आप करीब हॉस्पिटल में कहीं नहीं जाइए। अगर क्रिटिकल सूरत हाल है, فیصلہ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا اس وقت. اپنے زخمی کو اٹھاؤ, سیدھے آغا خان لے کر جاؤ. سب کو پیغام دے رہا ہوں یہ میں, سب کو. کوئی زخمی ہوتا ہے, پیسوں کی پرواہ نہ کرنا, آغا خان اٹھاؤ یا لیاقت نیشنل کی بات نہیں کرو, آغا خان لے کے جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ دھماکہ ہو یا فائرنگ ہو, مذہبی معاملات میں یہ نہیں کہ آپس میں لڑ پڑے اور لے گھر بولا کہ مر گیا. بہت سارے مسائل ہیں, یہ بھی میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں. ہاں, پتا پڑا آپس میں لڑ لیے, چھرے مار دیے, پھر بولیے مولانا مار دیا اس کو. یہ ہم تحقیق کریں گے, اس کے لیے بھی بنائیں گے کمیٹی. اٹھائیے مذہبی معاملے میں اٹھائیے اور اس کو آغا خان لے جائیے, مطمئن ہو جائیے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا, وہ پہلے کرتے تھے علاج کرایا, پٹی کرایا, ڈسچارج کر دیا, گھر چلے گئے. اس کے بعد بھول جاتے تھے, پھر وہ ٹیسٹ کرا رہا, یہ کرا رہا, بڑے مسائل ہوتے تھے. ہم نے اس سے وعدہ کیا مکمل علاج کراؤ گے. اس نے وعدہ کیا مکمل علاج کرائیں گے. پھر بھی کہہ رہا ہوں, پھر بھی کہہ رہا ہوں, ہم تشیع کے لیے بھیک مانگنے نہیں گئے تھے. ہمارا ہاتھ ہم اہل بیت کے ماننے والے اوپر رہے گا. پھر بھی کہہ رہے ہیں بے درد اٹھا کر آغا خان لے جانا, نہیں دے اگر کوئی, ہمیں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنے لیے, اپنے پیروں پر کھڑے, اپنے مومن کی خدمت کر سکتے ہیں. بے درد لے جانا آغا خان, اس کے علاج کا خرچہ, یہاں لوگ موجود ہیں, انہوں نے اجازت دی اعلان کرنا, اس کے علاج کا خرچہ انشاءاللہ ہماری کمیونٹی اٹھائے گی اگر وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ ہم بھیک مانگنے کا ہم نے ہاتھ یوں رکھا ہے اپنا, تاکہ تشیع کا وقار نہ گرے. اس کی بھی ہم لسٹیں بنا رہے ہیں. کچھ زخمی خاندان میں ایسے پڑے ہیں کہ جو ان کو آغا خان ریفر کریں گے. کچھ چیکس پھنسے ہوئے تھے شہدا کے, اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے. ہم نے ان سے پوچھا کیوں نہیں ملے, انہوں نے کہا بھائی انہوں نے نام غلط بھیجے تھے, ڈیٹا غلط بھیجا تھا, جس کی وجہ سے یہ چیک رکے ہوئے ہیں. اس ڈیٹے کے لیے ایک کمیٹی بن گئی ہے, کچھ حضرات پہلے سے اس پروسیس میں تھے. ان کے نام ولدیت میں ایک لفظ بھی ہوتا ہے, سرکاری کام ہے تو وہ کام نہیں ہوتا. ان کے نام اور ولدیت صحیح کی جائیں گی, ان کے وہ چیک رہ گئے, سانے عاشور اور ربعین میں سے کچھ لوگ تھے, ان کو وہ دے دیے جائیں گے. ایک ہمارے شاہ فیصل کا جوان تھا, اس کا مسئلہ تھا. ان کی بہن بھی مجھ سے ملی, والدہ بھی ملی, فون پہ بات کی, اور وہ پروسیس پہلے بھی چل رہا تھا. وہ ذرا اس میں ایک ٹیکنیکلی مسئلہ ہے, اس کی ری انویسٹیگیشن کے اندر ہوگی دوبارہ, اس کے آئی جی آرڈر جاری کرے گا, ری انویسٹیگیشن ہوگی اور پھر قانونی طریقہ ہوگا. اس سے پہلے اس کے لیے ممکن نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اس نے کہا کہ دو چار دن کے اندر یہ کام کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے ہم نے کوشش کی, آج یہاں اس کی رہائی کے لیے ہاتھ اٹھا کے بلند کرو, ان پہ بھروسہ نہ کرو. غازی قلم کے لیے بیٹھے ہو پروردگار علی, اور جو بھی اسیر موجود ہے تجھے واسطہ, ابوالفضل عباس کا واسطہ, جو بے گناہ اسیروں کو جلد سے جلد رہائی عنایت فرما, یہ بھی انشاءاللہ مسئلہ ہو جائے گا. اور ایک کیا تھا, ہم نے دوبارہ ری اوپن کیس کیا ہے. کچھ لوگوں کی شکایت تھی نا عسکری کے حوالے سے, ہم نے دوبارہ مطالبہ کیا اس کیس کو ری اوپن کیا جائے. وکیل صاحب کی کل میٹنگ ہے, اس کا نوٹیفیکیشن کورٹ جائے گا, کورٹ ہمیں نوٹس دے گا, ان کو لا کے دیں گے, وہ کیس ری اوپن دوبارہ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی اس میں پیش رفت ہوگی, کیونکہ وہ خود انٹرسٹڈ ہیں آفتاب حیدر جعفری شہید کے اور اس کیس کے اندر. کیونکہ کلو سے کلو ملتے ہیں تو قاتل تک پہنچ جاتا ہے بندہ, وہ انٹرسٹڈ ہیں اس میں. انشاءاللہ تعالی اس کے لیے بھی لیگلی, یہ لیگلی کام ہے, صرف دیر لگ جائے گی. وہ یہاں سے وہاں جائے گا, کورٹوں کا حال آپ کو پتا ہے, وہ بےچارے 67 کو پھانسی نہیں مل رہی تو ہم کیا کر سکتے, لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں, یہ بھی ہو جائے گا. یہ وہ اہم اہم چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. سنیے سنیے, یہ بیان کیے, دیکھیے بھروسہ کیجئے. یہاں سے ممکن ہو کوئی اٹھ کے بولے کہ بھائی مولانا صاحب نے اتنی دیر بٹھایا اور یہ بیوقوف بنا دیا. نہیں بھائی, ہم نے بیوقوف نہیں بنایا, دو ٹوک بات تھی, یہ سب نے یہ طے کیے تھے, میرا اپنا ایجنڈا نہیں تھا. کوئی غازی عباس قلم دبائے, کوئی خلوت میں کسی گورنر آئی جی ڈی آئی جی, مجھے شوق نہیں ہے ان چیزوں کا بھیا, تعلقات بڑھانے کا. نہ میں نے فون اٹینڈ کی, نہ میں نے بات کی, ان اکابرین نے کام کیا. सगीर आबिद साहब को मैंने कह दिया कि वो अगर कह रहा है कि मैं अपना कोऑर्डिनेटर बना रहा हूं तो हम अपनी हैसियत क्यों गिराएं, हमारे सर पे अमामा है, हम लिबास अंबिया पहनते हैं, हम उसको कोऑर्डिनेटर बनाएंगे जिसके तन पर लिबास अंबिया ना हो। अगर वो हमसे खेल रहा है तो हम भी उससे खेलते हैं कि आप कोऑर्डिनेटर बनिए, आप बात करते दीजिए, बोलो तुम्हारी हैसियत नहीं, बोलो मैं तुमसे बात ही नहीं करेंगे। बड़े अंदाज से हम चले हैं, खुदा का शुक्र है सुरखरू हुए, जिल्लत नहीं थी। और मैं हकीकत बता रहा हूं, जैसे मौलाना शब्बीर मैसमी ने कहा था ना, कुछ नहीं मिला फाड़ के फेंक दो, तो अजीजों जो चीज तुम लेना चाहते थे ना वो तुमने ले ली। ये जो तुमने आपने आजादारी की ना, ये करते इमाम बारगा में, अपनी गलियों में, मस्जिद, पता नहीं पड़ती। खुदा को कंटेनर लगे हुए, खौफ है बम फट जाएगा, ये फट जाएगा। ये जो आजादारी की, खुदा की कसम बेखौफ खतर, ना पुलिस, ना रुकावट, ना कंटेनर, और मरने के लिए तैयार, सरशार था हर आदमी शौक शहादत में, बिल्कुल तैयार था, इत्तेहाद और वहदत के साथ मरने के लिए तैयार था। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या कभी तुमने जिंदगी में ऐसी आजादारी की है कि दिन रात जिस जिक्र को दबा रहे हो, दबाने की कोशिश किया जा रही, कुछ नहीं हो रहा, दिन रात हुसैन का मातम, दिन रात हुसैन का मातम, इतना मातम किया, इतना मातम किया कि पूरी दुनिया में मराजे मुतवज्जे हो गए, इराक मुतवज्जे हो गया, हौजा एरमिया कुम मुतवज्जे हो गया, लबनान से फोन आना शुरू हो गए, अपना पारा चुनार, गिलगित, पूरा सिंध, और उसके बाद अमरीका, कैनेडा, साउथ अफ्रीका, पूरी दुनिया देख रही थी कि भाई क्या हो गया, कि तशय्यो ऐसे निकलकर बाहर आ गई। ये तुम्हारी असल फतह है, कुछ नहीं मिलता तुम्हें। खुदा की कसम, जो तुमने हुसैन से मोहब्बत का इजहार किया है, इसी ने दुश्मन की कमर तोड़ दी है। कि हम तो इनको डरा रहे थे कि इमाम बारगाह में चले जाओ, मस्जिदों में चले जाओ, घरों में चले जाओ। आज इन्होंने अमली मैदान में साबित कर दिया कि ना तुम्हारी गोलियां को खौफ है, ना बम धमाकों का खौफ। आ जाओ मैदान अमल में निकलकर, अगर तुम बम रखते हो तो अकबर के सीने हम भी रखते हैं। ठीक है ना, वो जो बेचारा हमें खौफ ज़दा करता ना, वजीर दाखला रहमान मलिक, भैया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा है? वो अब हमें दीन बताएगा हमारा, जिसे कुल अल्लाह पढ़ना नहीं आती है। तुम बताओगे हमें तुम्हारी हैसियत क्या है? हमें खौफ ज़दा करते हो, बम फट जाएगा। जिनके पास हुसैन नहीं है वो खौफ ज़दा होता है, जिनके पास करबला है, जायरन कफन ना पहना हो वो करबला का राही समझ लो कफन पहन कर सफर कर रहा है। शेरों में सुनते थे ना कि गुस्ले मैयत ना कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो, मैं चला हूं अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। हम तो मौला से मिलने जाते हैं। ठीक है ना, तो मौत का खौफ तो नहीं है, ये शायरी में नहीं पढ़ा करें, ये प्रैक्टिकल में देखे, तैयार रहे। कोई हमने हिसाब से वादा नहीं कि यहां जाओगे तब कोई शिया नहीं मरेगा, वो तो मरेगा। क्यों? ये सादत है, सादत। जब हुसैन ने खून दे दिया तो हुसैन अपना जिक्र बचाने के लिए तुमसे खून नहीं मांगेगा। मैं एक शहीद का वाक्य सुनाऊं, खत्म कर दिया बस, क्योंकि अब पता नहीं बाद में हमारे साथ क्या होगा, सारी भड़ास निकाल ली मैंने। शहीद की बहन का वाक्य सुनोगे? खुदा गवाह है, जज्बाती बातें नहीं कर रहा मैं। नौ बहनों का एक भाई मारा गया था 94 में। छोटी बहन भाई से बड़ी मोहब्बत करती थी, इतना रोई, इतना रोई। کہ تصور نہیں کر سکتے, بڑی بہنیں خاموش کراتی تھی, چپ نہیں ہوتی تھی. سویم والے دن اتنا اطمینان آ گیا, بڑی بہنیں رو رہی ہیں اور اس کو خاموش کرا رہی ہے, بہن مت رو, باجی مت رو, بھائی کیا ہوا, کل تو تیری حالت خراب تھی. کہا بھائی کو اذیت ہوتی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے بھائی کو خواب میں دیکھا تھا کہ ایک ہال سے کمرہ سا بنا ہوا ہے, اس میں شہداء کربلا بیٹھے اور درمیان میں سید الشہداء بیٹھے. جب میرا بھائی اس کمرے میں اس حال میں داخل ہوا تو حسین نے کہا باز جاؤ, میرا سپاہی آ رہا ہے, اس کا استقبال کرو. شہید اقبال سفارہ خانے میں شہید ہوا تھا, اس کا دوست شہید ہو گیا اربعین والے دن بلاسٹ میں, جو پہلا مارا گیا وہ وہی تھا. شہید اقبال نے کبھی چیلم کا عاشور کا جلوس نہیں کیا تھا, وہاں ملیر میں ہوتا ایک بہت بڑا جلوس, کفن پہن کر سیکیورٹی کیا کرتا تھا. پتہ نہیں کیا ہوا کہ آج میں شہر کی عزاداری کروں گا. اس کا دوست اس کے ساتھ تھا, 3:30 بجے گاڑی اس کی پنچر ہوئی ہے, 4:13 پہ دھماکہ ہوا ہے, وہاں پہنچ چکا تھا. شہادت اس کو کھینچ کے لے آئی تھی. کون سا ایسا عمل تھا کہ جو جناب زہرا کو پسند آ گیا, ہزاروں آدمی تھے, اس کو لے کر آ گئی وہاں سے کھینچ کر کہ تیرے پاکیزہ خون کی ضرورت ہے مجھے. اس کے دوست نے دیکھا, خواب میں دیکھا, اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم کہاں رہ رہے ہو, یہاں تو پھول ہی پھول ہے, سبزہ سبزہ, یہاں آ جاؤ. اس نے دوستوں سے ذکر کیا, یہاں موجود ہے اس کے دوست. کہا میں بڑا سوچتا تھا کیا, دوستوں سے ذکر بھی کیا. جب چہلم کا بلاسٹ ہوا, دروازے پہ کھڑا ہوا تھا بس میں, پہلا مرنے والا شہید وہ تھا, اس کو تعبیر مل گئی کہ یہاں بہار ہے. تو عزیزو یہ معجزہ ہے, مت گھبرایا کرو موت سے, خوف مت کھایا کرو. لہذا انشاءاللہ تعالی اتحاد کے ساتھ مرو گے تو فخر کرو گے. بس آخری بات کر رہا ہوں, پھر شکریہ ادا کر رہا ہوں شیعہ علماء کونسل پاکستان کی جانب سے, وحدت مسلمین کا. آخر میں سنوں گا, مرجے کا پیغام آخر میں ہوگا. وحدت مسلمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کراچی ڈویژن کا, جے ایس او پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آئی ایس او کا شکریہ ادا کرتا ہوں, تنظیم اعضا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پیام ولایت کا شکریہ ادا کرتا ہوں, شہید فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس کے علاوہ حیات ائمہ مساجد ذاکرین امامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جعفریہ لیگل ایڈ کے یہاں رہنما موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پاسبان جعفریہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, قیام کا, جے ڈی سی کا, جتنے ہمارے بھائیوں نے اسٹال لگایا, الزہرا ویلفیئر نے, شہید یہ پیام, جتنے اسٹال لگائے شکریہ نہیں, شکر غلط لفظ بول دیا شاید میں نے, شکریہ نہیں, انہوں نے آ کر اپنا فریضہ انجام دیا, اس کا اجر جناب سیدہ آپ کو انشاءاللہ تعالی دیں گی. میں شکریہ ادا نہیں کر رہا, وہ آپ کو دیں گی, آپ نے کیا. اب کیونکہ مجلس روکی تھی نا, اب دو چار مصائب کے جملے بھی سن لیجیے. خوش نصیب ہے کہ تسلسل کے ساتھ آپ نے عزاداری کی ہے, تسلسل کے ساتھ. جناب زینب سے کوئی پوچھے, جانتے ہو جب شمر کو گرفتار کیا ہے, حرملہ کو گرفتار کیا ہے امیر مختار نے, تو پوچھا تھا اس سے, حرملہ یہ بتا تو نے کربلا میں کون سا ایسا ظلم کیا تھا کہ میرا چوتھا امام سید سجاد تیری موت کی دعائیں کرتے تھے, تیری گرفتاری کی دعائیں کرتے تھے. حرملہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے امیر مختار تو برداشت نہیں کر سکتا, تو سن نہیں سکتا. امیر مختار نے کہا کوڑے برساؤ اس پہ, کوڑے برسائے گئے. ہاتھ جوڑ کہتا ہے امیر سن, میں نے 3 تیر چلائے کربلا میں. کہا کب چلایا؟ کہ ایک تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین کا بھائی عباس پانی لے کر دوڑ رہا تھا. مجھے عمر ساتھ کہتا ہے حرملہ نے بلایا, حرملہ کہتا ہے مجھے عمر ساتھ نے بلایا, حرملہ
कोई ऐसा काम कर ले कि किसी तरह बास को रोक ले। हुरमला कहता है मैंने तीर में कमान को जोड़ा और मैं अब्बास के ताकुब में निकला। कहा मैं फिक्रों में डूब गया कि अब्बास के दोनों बाजू कट कर चुके हैं। आखिर कौन सी ऐसी ताकत और कुवत है कि जो अब्बास को खेमे की तरफ खींच रही है। कहा बहुत गौर करने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि जब तक मश्के सकीना में पानी है अब्बास को कोई ताकत नहीं रोक सकती। अजादारा ने हुसैन हुरमला कहता है मैंने तीर को कमान में जोड़ा, कटे हुए बाजों के दरमियान से मश्के सकीना को तीर की जद पे लिया। जानते हो अजादारो, इधर मश्क पर तीर लगा, तीर मश्क को छेदता हुआ अब्बास की पसलियों में गड़ गया। इधर पानी का बहना था, अब्बास की आरजू बह गई। असबे बावफा अपने रुख को मोड़ दे, अब्बास शर्मिंदा है सकीना से। अजादार अमीर मुख्तार गश खा कर गिर पड़ा। जब गश से बेदार हुआ फिर पूछा मलाउन बता तीसरा दूसरा तीर तूने कब चलाया। कहा सुन नहीं सकता, कोड़े बरसाओ। जब कोड़े बरसाए गए कहता है सुन मैंने दूसरा तीर उस वक्त चलाया कि जब 6 माह के बच्चे ने उमरे साथ के लश्कर को पलट कर रख दिया था तो घबरा गया था उमरे साथ। हुरमला चल दिया इत्ता कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। मैंने रिवायत नहीं पढ़ी है, किसी साकिर से आलिम से सुना है। जब किसी से पूछा था ना हुरमला ने, हुरमला से किसी ने पूछा था हुरमला ये बता तू इतना बड़ा पहलवान था, इतना बड़ा शमशीर जन और बहादुर था, लेकिन समझ में नहीं आया कि जब तू 6 माह के अली असगर का निशाना ले रहा था तो तीर बार बार तेरे हाथ से छूट रहा था, आखिर माजरा क्या था। हुरमला कहता है कि जब मैंने पहली दफा अली असगर की गर्दन का निशाना लिया तो मैंने देखा मेरे सामने रसूल खुदा आ गए हैं। रोकर कहते हुरमला, हुरमला ऐसा जुल्म न कर, तीर मेरे हाथ से छूट गया। कहा दोबारा तीर क्यों छूटा। कहा सुन जब मैंने दोबारा अली असगर की गर्दन का निशाना लिया तो एक सिया लिबास में मलबूज मौसमा मेरे सामने आ गई और फरियाद करती है ए हुरमला जरा अपने तीर को देख और मेरे अली असगर को देख। अमीर मुख्तार गश खा कर गिर पड़ा। जब गश से बेदार हुआ पूछा बता मलऊन तीसरा तीर कब चलाया, तीसरा तीर कब चला। का बर्दाश्त नहीं कर सकता, का कोड़े बरसाओ। कहता मैंने तीसरा तीर उस वक्त चलाया कि जब फातिमा का लाल जख्मों से चूर हो चुका था, पुश्ते जुलजना पर टकमगा रहा था, मुझे मेरे साथ ने बुलाया हुरमला कोई ऐसा काम कर दे कि हुसैन घोड़े से गिर जाए। हुरमला कहता है मैंने तीर को कमान में जोड़ा, मैं चाहता था हुसैन का निशाना लो लेकिन कोई जगह ना थी जहां तलवार का जख्म ना हो, जहां तीर का जख्म ना हो। जब कोई जगह ना मिली मैं एक नशे में जाकर बैठ गया। काफी देर बाद सुन सकोगे हुरमला ने क्या कहा। कहा काफी देर बाद मैंने हुसैन की पेशानी को देखा, मैंने पेशानी को तीर की जद पे लिया। अजादारो इधर हुसैन की पेशानी पर तीर का लगना था, फातिमा का लाल पुश्ते सुलझना पर ना समझ सका। इमाम ज़माना सलाम कहते हैं मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर के जब घोड़े से गिरा, ना जीन पर था ना जमीन पर था। अरे मैं कहता हूँ गौर से देखो तो कोई दुखियारी माँ अपनी गोद फैलाए आवाजें दे रही होगी आ मेरे हुसैन।